हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पिछले दो दिनों में मेलिसा के साथ जो भी हो रहा था उससे उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और हाथों में भी कई जगह से खून निकल रहा था। जस को वहां देखकर मेलिसा ने हंसकर कहा, क्या हुआ, फ्री हो गए अपने कामों से और आ गए मुझे फिर से टॉर्चर करने? विधिक ने तुम लोगों को धमकी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। जानते हो ना मेरा हस्बैंड कौन है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे यहाँ से निकाल ही लेगा। जिस दिन मैं यहाँ से निकली उस दिन तुम लोग। बोलते हुए मेलिसा रुक गई क्योंकि जस ने उसके सामने आईपैड की स्क्रीन कर दी थी जिसके ऊपर रॉबिन के मरने की न्यूज़ चल रही थी। उस न्यूज़ को देखने के बाद मेलिसा की आंखें नम हो गई। उसके पास वहां से निकलने का एक इकलौता सहारा रॉबिन का था, वो भी मर चुका था। उसने जस की तरफ देखा तो जस ने उसकी तरफ बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए। हाँ तो क्या कह रही थी तुम, तुम्हारा पति? ये तुम्हारा पति मर चुका है और नो डाउट इसे किसने मारा होगा, जस ने मुस्कुरा कर कहा। विधिक ऐसा नहीं कर सकता, उसने ये नहीं किया होगा, मेलिसा रोते हुए चिल्लाई। अच्छा तुमने विधिक का नाम ही क्यों लिया, वो रॉबिन को क्यों मारेगा? और उसने रॉबिन को मारा है तो वो तुम्हारे बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। मैं तो कहता हूँ हमसे हाथ मिलाकर विधिक राणा को पकड़वा दो, ज्यादा नहीं तो तुम्हारी सजा कुछ तो कम होगी। ऊपर से तुम्हारे ऊपर विधिक राणा नाम का खतरा भी टल जाएगा। सोच लो क्या करना है। जस अपनी बातों से उसे हर तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। मेलिसा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रॉबिन की मौत से वो टूट चुकी थी और जोर जोर से रो रही थी। जस ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया और नरमी से कहा, हर इंसान को अपने किए हुए पाप की सजा मिलती है। मैं यहाँ तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रहा, पर कभी सोचा है कि तुम लोगों ने जिन मासूमों के साथ गलत किया है उन पर क्या बीती होगी? आज तुम्हें खुद के अकेले होने पर इतना दर्द महसूस हो रहा है। एक बार भी उनके दर्द का ख्याल किया है जिन लोगों को तुमने मारा है और पीछे से उनकी फैमिली अकेली रह गई है? टेबल पर एक फाइल पड़ी थी। जस ने उसे खोला और उसे पढ़ते हुए कहा, बरसों पहले रॉबिन ने एक छोटी बच्ची के सामने उसी की माँ को मार डाला। कभी सोचा है उस मासूम के दिल में क्या बीती होगी? उसके 6 महीने बाद तुम लोगों ने स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। कितने बच्चे मरे थे याद है उसमें? वहाँ काम करने वाले स्टाफ के लोगों की जान गई थी, उनके बच्चे लावारिस हो गए थे। जस फाइल में पढ़कर उनके किए हुए कारनामों के बारे में बता रहा था। तभी मेलिसा रोते हुए जोर से चिल्लाई, बस करो, चुप हो जाओ, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है? दिख नहीं रहा इस वक्त मैं अकेली हूँ, मेरा आखिरी सहारा भी जान चुका है, कम से कम मुझे चैन से रोने तो दो। तुम्हें तुम्हारे पापों की बहुत छोटी सजा मिल रही है, उतने में ही तुम्हारा दिल कांप गया। जस ने वो फाइल रख दी और वहाँ से बाहर आ गया। मेरा काम हो गया, मुझे नहीं पता था तुम लोगों ने ये सब किया है। तुम एक बार विधिक के खिलाफ सबूत तो दो, फिर अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा मेलिसा डिसूजा। जस की आंखों में उन लोगों के लिए नफरत झलक रही थी। वो वापस मीटिंग रूम में आया और वहाँ हुई सारी बातों के बारे में उन्हें बताया। ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि वो ब्रोकन है। आई होप आगे ये केस ज्यादा टाइम ना ले और सब सुलझ जाए, मिस्टर दत्त ने मीटिंग खत्म करते हुए कहा। वो वहाँ से चले गए। पहले मीटिंग रूम की लाइट डिम थी ताकि प्रोजेक्टर की लाइट अच्छे से दिखाई दे सके। उनके जाने के बाद मिस्टर गुप्ता ने प्रोजेक्टर बंद कर दिया और लाइट ऑन कर दी। जैसे ही लाइट ऑन हुई उन सब की नज़र अमन के वाइट शर्ट पर गई जिसके कंधे पर आंशी के लिपस्टिक के निशान थे। मिस्टर जिंदल ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली और मिस्टर गुप्ता से कहा, मिस्टर गुप्ता आप ऐसा कीजिए, रॉबिन की जो भी फाइल्स हैं उनको कलेक्ट कीजिए, उसके जुड़े हर अच्छे बुरे काम की। उनके ऐसा कहने पर अमन उनकी तरफ हैरानी से देख रहा था क्योंकि सभी फाइल्स वहां डेस्क पर पड़ी थीं। उसने बाकी लोगों की तरफ देखा तो हर कोई उससे नजरें चुरा रहा था। सब आपस में उलझे थे और कोई उससे बात नहीं कर रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले जस ने सीटी बजाते हुए एक गाने की धुन गुनगुनाने हुए बोला, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबां पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। उसके ऐसा करने पर अमन ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसने अमन को उसके कंधे पर देखने का इशारा किया। स्टॉप डूइंग दिस, लावण्या ने उसे डांटा। तुम मेरे साथ चलो। लावण्या ने अमन का हाथ पकड़ा और उसे स्टोर रूम में ले गई। वहां उनका पर्सनल सामान होता था। उसमें से उसने अमन के लिए दूसरी शर्ट निकाली और उसे पकड़ा कर कहा, मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम्हारे कंधे पर ये मार्क कैसे आया। तुम क्लोज हुए थे ना उससे? बोलते हुए उसका लहजा काफी सर्द था। एक्सक्यूज मी प्लीज, अमन ने जवाब में इतना ही कहा और शर्ट लेकर वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद लावण्या के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने गुस्से में अलमारी पर पंच किया और कहा, पता था मुझे यही होगा। मेरा दिल तोड़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना इसका नतीजा उसी को भुगतना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज किए हैं, गलती से भी मुझे चीट किया तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। लावण्या वहां से चली गई। अमन भी चेंज करके बाहर आ गया था। उसने लावण्या की बातें सुन ली थी और उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। विधिक अपने कमरे में सोया था, तभी उसके पास एंड्रू का कॉल आया। अब तक एंड्रू को रॉबिन की मौत की खबर मिल चुकी थी और वो विधिक से बहुत गुस्से में था। मोबाइल की रिंग बजने पर विधिक कांप गया और उसका नंबर देखकर भी उसने कॉल पिक नहीं किया। इसे नींद खराब करने के लिए मैं ही मिला क्या? क्या इसे सच में ये लगता है कि रॉबिन को मारने के लिए मैं इसे कोई एक्सप्लेनेशन दूंगा? बेवकूफ कहीं का। अपना फोन बंद करके विधिक वापस सो गया। सब लावण्या की वजह से क्या अमन और आंशी के रिश्ते में कोई फर्क आएगा? वैसे रॉबिन को मारकर विधिक ने सही किया या गलत? व्हाट डू यू थिंक? समीक्षा में आपका स्वागत है।